ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आज हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय पूरे अध्याय का के कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि पूरा पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करें। एक बार की घटना है कि नारद वेदव्यास जी ने सारे वेदों जो उनके जो मुख्य वेद था उसको चार भागों में बांट दिया और उन चार वेदों को उन्होंने अपने अपने शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने उस पर और व्याख्याएं लिखी और व्याख्याओं को उन्होंने और अपने शिष्यों को दिया और उस पर व्याख्या उन्होंने लिखते गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बहुत बड़ा सा एक्सपांड होता है। उसके बाद उन्होंने महाभारत लिखा, इतिहास पुराण लिखा। इस सब के बाद भी मेरे व्यास जी जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। अभी किसी ने हजारों श्लोक वेदों में हजारों लाखों श्लोक लिखे हो, महाभारत 1,00,000 श्लोकों का है वो लिखा हो, 18 पुराणें लिखी हो, उसके बाद भी हमारे वेद व्यास जी जो थे वो असंतुष्ट थे। वेद व्यास जी को हृदय से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो नहीं मिल रहा था कि अरे इतना सब कुछ मिलने के बाद भी क्या एक डाउट था, उनकी संदेह था कि क्या इससे लोग का कल्याण होगा या नहीं, क्योंकि इससे मैं कुछ संतुष्ट नहीं हो रहा, मेरे हृदय में प्रसन्नता नहीं हो रही है। क्योंकि उन्होंने भगवान के गुण रूप लीला आदि का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया। उन्होंने क्या घुमा फिरा के बात की, कर्मकांड ये वो दुनिया ज्ञान ज्ञान मार्ग, बाद में कर्मकांड का मार्ग और भी कई सारे जो मार्ग अष्टांग योग की पद्धति, इस दुनिया भर की चीज़ों को वेद व्यास जी ने अपने ग्रंथों में लिख दिया। और जो वास्तव में मूल चीज़ जो वास्तविक जो चीज़ थी भगवत भक्ति के बारे में जिससे वास्तव में सबका उद्धार होगा उसको एकदम संक्षिप्त रूप में लिख दिया था इन सब कार्यों। महाभारत में उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में लिखा था लेकिन जिस तरह से लिखना चाहिए था उस तरह से नहीं लिखा। फिर नारद जी ने आकर वेद व्यास जी को डांट दिया। पहले तो नारद जी ने वेद व्यास जी की स्तुति की, वेद व्यास जी आपने तो बहुत बड़ा कार्य कर दिया, तो पहले जाते डांट देंगे तो अच्छा नहीं होगा, आप किसी घर पर आते और आते आप डांटना चालू कर देंगे तो ऐसे अच्छा नहीं है। तो नाराज जी पहले वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने पहले तो वेद व्यास जी के कार्य की सराहना की कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने चार वेद बनाए, आपने 18 पुराण लिख दिए, आपने इतिहास के राज महाभारत के रूप से बहुत सारे अर्थों को खोल दिया, आपने वेदों के अर्थ को खोल दिया, इतना सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छा कार्य। तो वेद व्यास जी समझ रहे थे कि वेदव्यास जी ने कहा कि नारद जी लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो नारद जी ने कहा कि जानते हो क्यों संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि तुमने भगवान की भक्ति का भगवान के गुण रूप लीला आदि का तुमने सीधी तरह से वर्णन नहीं किया, चुप चुप के वर्णन किया है, संक्षिप्त रूप में कई के बहुत संक्षिप्त में वर्णन किया है। और जानता है इस संसार के जो लोग हैं वो जो कम बुद्धि वाले हैं, अल्प आयु वाले हैं, पहली बात तो इतने सारे शास्त्र पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर से छुटकारा मिलेगा तब तक शास्त्र पढ़ेंगे, टीवी इंटरनेट से व्हाट्सएप से और ऐसे फेसबुक से छुटकारा मिलेगा तब जाके लोग विश्वास कर पड़ेंगे। और तो उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होगा, आपको डायरेक्टली कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने नारद जी ने चार श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत वेद व्यास जी ने बताया और फिर वेद व्यास जी ने समाधि अवस्था में नारद जी के जाने के पश्चात समाधि अवस्था में उन चार श्लोकों पर मेडिटेट किया और उससे उनको भागवत देवी मिला। भागवत एक साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत ग्रंथ के रूप में साक्षात भगवान का अवतार है। जिस तरह से भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, नरसिंह अवतार लेते हैं, अन्य कई कई सारे अवतार लेते हैं, नहीं वराह अवतार लेते हैं, अलग अलग कार्यों के अवतार लेते हैं। उसी तरह से कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के द्वापर के अंत में, मतलब भगवान द्वापर के अंत में भगवान अप्रकट होते हैं। उसके बाद कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ने स्वयं भागवत के रूप में, ग्रंथ के रूप में अवतार लिया। जो श्रीमद् भागवत है ये साक्षात भगवान ही है। जिस तरह से हम नाम जप करते हैं इस विश्वास के साथ कि ये और भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, उसी तरह से जो श्रीमद् भागवत है ये भी भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद भागवत के रूप में भगवान दोबारा प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो आए ही है, लेकिन भागवत के रूप में भी भागवत जो है ये भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार है, और इसके संपर्क में रहने से जीव का उद्धार निश्चित हो जाता है। तो वेदव्यास जी ने भागवत की शुरुआत की, और उस भागवत की शुरुआत में उन्होंने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, भगवान को प्रणाम किया है। तो हम शुरुआत में, प्रभुपाद जी ने तो बहुत लंबा परपट दिया हुआ है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में इसको कवर करूंगा। वैसे तो भागवत के एक श्लोक पर आप पूरे साल भर चर्चा कर सकते हैं। इस ये भागवत के एक-एक श्लोक की महिमा है। जन्मादस्य यतन्वयादित रतश्चार्ते शुभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मोयन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र ति सर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हे मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव नंदन, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। वेदव्यास जी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। उसके बाद वे कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि क्यों करते हैं ध्यान, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के उत्पत्ति पालन और संहार के एकमात्र कारण है, और समस्त कारणों के भी वही कारण है। इसलिए वेदव्यास जी सर्वप्रथम भागवत में वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से प्रणाम करते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत है। इतने सारे जीवों के हृदय में कब कब क्या क्या संकल्प उठता है भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मालूम है। भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप से, तो वो हमारे हर एक संकल्प का उनके पास उनको पता रहता है। हम शायद याद नहीं कर पाएंगे, अगर हमें बोला जाएगा कि आज के समय एक साल पहले इसी क्षण हम क्या विचार कर रहे थे, हाँ प्रभु जी आज इसी समय एक साल पहले इस समय में हम क्या विचार कर रहे थे, हम नहीं जान पाएंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान को हम किस समय क्या विचार कर रहे थे कौन, सब कुछ पता है। तो यह है श्री भगवान। तो ऐसे भगवान को वे प्रणाम कर रहे हैं, और वे परम स्वतंत्र है। भगवान श्री कृष्ण से ये सारी सृष्टि निकलती है, सब कुछ निकलता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है, परम स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। यद्यपि उनके कार्य कुछ ऐसे है कि वो ऐसा लगता है कि किसी वो अधीन है, उनकी लीलाएं कुछ ऐसी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि उनसे परे और कोई कारण नहीं है। भाई उनका कोई कारण हो तो वो किसी का अधीन है, उनका कोई कारण ही नहीं, वो सबके कारण है, तो वो कैसे किसी का अधीन हो, तो वो स्वतंत्र है। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को हृदय में वैदिक ज्ञान दिया। ऐसा हुआ था कि जब सृष्टि हुआ था जब भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और उस समय ब्रह्मा जी को विचार कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। वो सब जगह देख रहे थे ऐसे, क्या करना है, कहाँ हूँ मैं। तो ऐसे जब सब जगह घूम रहे थे, उनके 4 मुख आ गए, भागवत में सब लिखा गया है। और फिर जब उन्होंने देखा कि मैं किसी कमल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे घोर समुद्र लग रहा है, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे मेरा जो मूल है मुझे वो खोजना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने जर्नी होम नहीं जर्नी डाउन चालू किया। तो ब्रह्मा जी नीचे की तरफ अपने जो कमल के जो तंतु है उसमें से नीचे जाने लगे कई वर्षों तक जा रहे थे। सोच रहे थे कि हमें भगवान हमारा जो मूल कारण कौन है पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी जा रहे भगवान ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता चल रहा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो वापस चलते हैं। फिर ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। उसके बाद उनको दो अक्षर सुनाए दिए, तप करो बेटे तप करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने उनको अपना सारा वैकुंठ जगत दिखला दिया। भगवान प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ तक मिलाया मित्रतापूर्वक। अभी काम करना है साथ में ना, तो भागवत में ऐसा वर्णन, तो ब्रह्मा जी द्रवित हो जाते कि भगवान प्रभु आपने मुझे जैसे एक मित्र से हाथ मिला था उस तरह से आपने मुझसे हाथ मिलाया। वास्तव में आप कितने सुहृद हैं, हम सबके सुहृद हैं। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह समूह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में अग्नि को देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण के कार्य ऐसे इतने अलौकिक है कि बड़े बड़े महामुनि लोग जैसे आज इस संसार में अब तक कई सारे मुनि हो गए जिन्होंने मुख्य रूप से जो छह प्रकार के सिद्धांत है जैसे सांख्य योग न्याय वैशेषिका मीमांसा वेदांत, इस पर बड़े बड़े मुनियों ने एकदम बड़े बड़े स्कॉलर बड़े बड़े विद्वान आज तक संसार में इनके जैसा विद्वान कभी हुआ ही नहीं था। उन लोगों ने बहुत कुछ लिखना बहुत कुछ जानने का प्रयास किया लेकिन उन लोग कभी भगवान को समझ नहीं पाए क्योंकि भगवान की माया ने उनको समझने नहीं दी। भक्ति का सहारा नहीं लिया तो उन लोग कुछ भी कर ले उनको भगवान समझ में नहीं आएंगे। उसके बाद देवताओं की ये स्थिति है। जब भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए थे उस समय सारे देवता लोग कंस के कारागार में गए तो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप धन्य हैं आप आए हैं। और उसमें इंद्र भी थे, सब इंद्र भी थे ब्रह्मा भी थे भगवान का स्वागत करने के लिए सृष्टि में आए कि सब लोग आप प्रभु आप आए हैं संसार में आपका स्वागत है कृपा करके इन सारे असुरों का वध कीजिए। अब कुछ ही समय के बाद वही ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, वही इंद्र भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और जिस कुछ समय के उनके कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ हल्का सा टाइम होगा लेकिन इंद्र और ब्रह्मा दोनों का माथा घूम जाता है और वो लोग भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो ये सारे जो देवता लोग भी है ये लोग भी मोहग्रस्त हो माया से मोहग्रस्त हो जाते। कैसे हो जाते हैं? जैसे अग्नि में हमें जिस तरह से जल जल दिखाई देता है कभी कभी अगर हम लोग अग्नि देख कभी कभी हमेशा अगर आप अग्नि देखेंगे तो अग्नि में हमको दिखेगा कि थोड़ा जल एक माया का एक इल्यूजन है, एक माया का पर्दा है हमारे सामने, एक ये प्रकार से हमारी बद्धता है जीव की बद्धता है जिस कारण से हमें वो अग्नि में जल दिखाई देता है। या जो स्थल में भी कभी जल की प्रतीति होती है। कभी आप गाड़ी से जाएंगे बड़ी तेज धूप रहती होगी तो आप देखेंगे रास्ते पे जो हाईवे पे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जो रोड है उसमें आपको लगेगा कि पानी है। और कभी कभी आप जल में जाइए तो आपको लगेगा कि यार तो इसमें कोई स्थल है। तो ये हमारा इल्यूजन है, ये माया का पर्दा है, इस कारण से हमें चीजों को दिखाई नहीं देता। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते हैं। ये जो भौतिक ब्रह्मांड ये सब जो जीवन चल रहा है अभी हम लोग तो भक्तों की संगति में है भागवत पढ़ रहा है इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि ये सब वास्तविक नहीं है, ये टेम्पररी है सत्य है लेकिन कुछ समय के बाद ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग मैं और मेरे भन की भावना के कारण ये सब सोचते हैं कि ये जो चीज है वो शाश्वत है और ये अनादिकाल तक रहेगी। हमें ये मनुष्य शरीर का जीवन ही यही कि पैसे कमाओ खाओ पियो यही सब करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है यही सब करने के लिए। तो ये भगवान की माया के प्रभाव से होता है सब कि हम लोग हमारा जो वास्तविक जो कर्तव्य है भगवान से प्रेम करना उसको भूल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं मैं और मेरे मन की भावना के अधीन होते हुए हम लोग इस संसार के वस्तुओं को भोगते रहते हैं संसार के लोगों को भोगते रहते हैं और हमारे वास्तविक स्वरूप को, हमारे वास्तविक का, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या, हम कृष्ण के दास हैं, हम उसको भूल जाते हैं और अन्य सबकी दासता करते रहते हैं। और हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना, उसको छोड़कर हम सारी दुनिया की सेवा करते हैं। और इस ये और उस कारण से ये जगत है ये वास्तविक लगने लगता है। क्यों क्यों हम लोग ये सब करते हैं, भगवान की होती, क्यों हमें लगता है कि ये संसार है, ये जो संसार है ये सही है, वास्तविकता यही है संसार की, कि हमें क्या करना है, हमें इन लोगों की सेवा करनी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनका पालन पोषण करना है, उसके लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो अतः मैं उन सबको, उन सब भगवान श्री कृष्ण का, उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वदा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो ये सब संसार हमारे लिए बनाए हैं, लेकिन वो कहां रहता है, वे अपने निज धाम में, ये सब चीज से ऊपर। भगवान ये सब चीज उन्होंने बनाई है, लेकिन इससे इससे वो पूरी तरह से परे है। उसके बाद अगला श्लोक है, धर्मा प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापोत्रयन्मूलनं श्रीमत भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यहृदयवरुद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। यहाँ पर भागवत का एक पेज है, एक भागवत की एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसका हम लोग इस श्लोक में थोड़ा इसका आंसर, इसका उत्तर जानेंगे। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की समस्त फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। भागवत में क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके ऊपर की बात की गई है। मतलब केवल और केवल भगवान को किस तरह से प्राप्त करना है, यही बात कही गई है। भगवत भगवान के भक्तों का चरित्र रखा गया है, उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया है, और यदि हम लोगों को करना है तो कैसे करना है, यही यही बात इसमें कही गई है। और इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई बात नहीं कही गई है, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक भगवान श्री कृष्ण का निरूपण हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में गूढ़ से गूढ़ रहस्य, भगवान के विविध अवतारों के बारे में गूढ़ से गूढ़ रहस्यों के बारे में श्रीमद् भागवत में बताया गया है। इससे इसको जानने से क्या होगा, इसको श्रवण करने से क्या होगा, जो तीनों तापों से, तीन प्रकार के तापों से, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये सारे ताप भागवत के संपर्क में आने से नष्ट हो जाएंगे। केवल संपर्क में आने से, इसको श्रवण कीजिए, अध्ययन कीजिए, कीर्तन कीजिए, भागवत के संपर्क में आने से तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। और यदि ऐसा साधन हमें मिल रहा है तो और किसी शास्त्र का क्या, और किसी शास्त्र का क्या प्रयोजन, हमें और क्यों शास्त्र और दूसरा शास्त्र क्यों चाहिए। तो साक्षात भगवान ही मूर्तिमंत रूप से भागवत के रूप में प्रकट है, और जिसके जिनके जिसके संपर्क में आने मात्र से संसार के जो ताप ताप है सब नष्ट हो जाएगा, तो हमें और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। तो ये वेद व्यास जी पूछ रहे कि हमें किसी और शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं है। जिस समय भी सुकृति पुरुष, सुकृति मतलब बहुत भागवत कथा सुनने की इच्छा रखना है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग हजारों हजार यज्ञ कर लेंगे, लेकिन उनको यदि भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं है तो सारा यज्ञ फेल है। यहाँ पर वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करता है, सुकृति जिसने जिसका बहुत ज्यादा पुण्य किया है, उसने बहुत पुण्य किया है, और वो पुण्य का जो फल है, उसको जो पुण्य का जो फल आ रहा है वो क्या है, कि उसको भागवत सुनने में रुचि है, भागवत भागवत को पढ़ने में रुचि है, भागवत का कीर्तन करने में रुचि है। किसी तरह से यदि ऐसे सुकृति पुरुष भागवत इसके श्रवण की इच्छा कर, केवल इच्छा करते हैं, पढ़ना दूर की बात, श्रवण करना दूर की बात, केवल इच्छा करते हैं, केवल इच्छा भागवत सुनने की, केवल इच्छा करते हैं, आपने सुना नहीं है भागवत, पढ़ा नहीं है, आपने कीर्तन भी नहीं किया, सिर्फ इच्छा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं। वेदव्यास जी का वाक्य है। बंदी बन जाते हैं जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो तब तो क्या, तब तो बात ही क्या है। हमें ये रियलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि हम लोग बद्ध है, लेकिन वेदव्यास जी लिख रहे हैं ये बात अपने मंगलाचरण में शुरुआत में क्या लिख रहे हैं, केवल इसको श्रवण करने मात्र की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में बंदी हो जाएंगे। अभी यहां पर श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् भागवत महामुनि, महामुनि ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की। इस पर एक बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, अरे कई सारे टीकाओं में कहा गया कि ये महामुनि का अर्थ वेदव्यास जी, अभी मंगलाचरण लिखा है वेदव्यास जी ने, और अपनी क्या वेदव्यास जी अपनी ही अपने आप को ही नमस्कार करेंगे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, तो अपने आप को ही वेदव्यास थोड़ी नमस्कार करेंगे। तो कुछ हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों का ये मानना है कि यहां पर महामुनि का अर्थ नारद जी है, कि नारद जी ने वेदव्यास जी को उपदेश दिया है, वो नारद जी की कृपा से उनको भागवत भागवत की रचना की, या कुछ और आचार्यों का यह मानना है कि नारद जी ने नर नारायण ऋषि से बद्री का आश्रम में भागवत सुना है और वो भागवत आके उन्होंने वेदव्यास जी को दिया। तो इसलिए महामुनि का अर्थ नर नारायण ऋषि भी है, ये अलग अलग कुछ आचार्यों के मत है। अब एक और प्रश्न, कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में आता है, मतलब 18 पुराण है, श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, सही बात है, श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है। फिर एक प्रश्न आता है कि वेद ऐसा कहा गया कि वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, इतिहास लिखा, सारे वेदों को वेद उपनिषद सब कुछ लिखने के बाद जब वो उदास हो गए थे तब नारद जी आया, फिर नारद जी ने बताया और फिर उन्होंने भागवत लिखा, फिर उन्होंने भागवत किया, तो ये कंफ्यूजन है ना कि भागवत तो 18 पुराणों में आता है, तो 18 पुराण तो पहले ही रचना हो चुकी है, फिर ये नारद जी ने आके जो किया फिर ये क्या है, प्रश्न है ना। तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं, जीव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि श्रीमद् भागवत सबसे पहले नारद जी के आने से पहले की बात है, जब वो पुराणों की रचना कर रहे थे, श्रीमद् भागवत उस समय उनके पास संक्षिप्त रूप से प्रकट हुआ। देखिए जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव को अपना माता पिता मानकर प्रकट होते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत भी वेदव्यास जी को अपना माता पिता स्वीकार करके इस संसार का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत ही वेदव्यास जी का रचना नहीं है, श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है अपने अपनी कृपा अपने अपनी इच्छा से, वेदव्यास जी को माध्यम बनाकर प्रकट हुआ है। तो यहाँ जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि 18 पुराणों की जब बात आई थी, जब 18 पुराण उस समय उन्होंने संक्षिप्त रूप से भागवत की रचना कर दी थी, और क्योंकि उसी के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र पर व्याख्या लिखी थी। तो ये जो एडिशन था उसको फर्स्ट एडिशन बोल सकते हैं, प्रथम संस्करण जो वेदव्यास जी ने जो भागवत जो 18 पुराणों के साथ लिखा, वो फर्स्ट संस्करण है, प्रथम एडिशन, फर्स्ट एडिशन बोलते हैं ना, जैसे हम लोग भगवद गीता प्रिंट करते हैं तो प्रथम बार प्रिंटिंग, फिर द्वितीय प्रिंटिंग, फिर तृतीय प्रिंटिंग, इस तरह प्रिंटिंग होता रहता है। तो ये जो भागवत था 18 पुराणों के साथ जो उसकी रचना की थी वो था उस भागवत, श्रीमद् भागवत का प्रथम संस्करण, फर्स्ट एडिशन। और सेकंड एडिशन जो रिलीज हुआ वो नारद जी के आने के बाद, रिवाइज्ड एडिशन, नारद जी आए, उन्होंने उपदेश दिया और उपदेश के उस उपदेश को प्राप्त कर समाधि अवस्था में वेदव्यास जी ने भगवान के दिव्य लीलाओं को देखा और भागवत का विस्तार किया, तो वो हुआ सेकंड एडिशन। तो हमारे पास जो हमें जो उपलब्ध है वो है श्रीमद् भागवत का सेकंड एडिशन। श्रीमद् भागवत और वेदांत सूत्र इन दोनों के विषय एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, और उन दोनों में संबंध अभिधेय और प्रयोजन यही तत्वों की स्थापना की गई है। किस तरह से भगवान कौन है, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, और जो प्रयोजन है प्रेम, कृष्ण में प्रेम, भगवान में प्रेम, यही दो वेदांत सूत्र और भागवत दोनों का एक ही है। लेकिन हम लोग वेदांत सूत्र के उसी, हम लोग तो यही मानते कि वेदांत सूत्र का जो स्वाभाविक जो व्याख्या है वो है श्रीमद् भागवत, हम लोगों को यही मानना है। और यदि हम लोगों को वेदांत सूत्र पर कोई व्याख्या स्वीकार भी करनी है तो हम उन्हीं लोगों को स्वीकार करते हैं जो लोग भागवत को स्वीकार करते हैं। जो लोग भागवत को स्वीकार नहीं करते उनकी हम लोग लिखी हुई वेदांत सूत्र की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। पहले बात तो हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि हमारे लिए श्रीमद् भागवत ही पर्याप्त है। श्रीमद् भागवत हमें संसार से तारने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यदि किसी को और अन्य चीजों में जाना है तो उन लोगों के लिए यह है कि वे लोग वेदांत सूत्र के, अगर जैसे रामानुजाचार्य जी और अन्य जो बड़े बड़े वैष्णव आचार्य है उन लोग श्रीमद् भागवत को मानते थे, उनके द्वारा जो लिखित जो वेदांत सूत्र पर व्याख्या है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, अन्य नहीं। अभी प्रश्न उठेगा कि जीव गोस्वामी लिखते हैं कि सेकंड एडिशन है, कि भागवत में भी कहीं वर्णन है कि सेकंड एडिशन है ये? जी हाँ, सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं, सम संहिताम भगवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मज शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय सातवां चैप्टर आठवां श्लोक, उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इससे अपने निवृत्ति परायण पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। मतलब यहाँ पे सुध गोस्वामी कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि पहले भी उनके पास एक था और उसके बाद उन्होंने पुनरावृत्ति करके, मतलब सेकंड एडिशन उन्होंने अपने बेटे के लिए रिलीज किया, जो उसके जो अपने बेटे को सुनाया, शुकदेव गोस्वामी को सुनाया। तो ये कन्फर्मेशन मिलता है भागवत से भी, जीव गोस्वामी भी कहते हैं और श्रीमद् भागवत में सुध गोस्वामी कहते हैं कि हमारे पास जो वर्जन अवेलेबल है श्रीमद् भागवत का ये सेकंड एडिशन है। गौड़िया मठ मद्रास ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक किताब पब्लिश की है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। उसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि इस संसार के समस्त ग्रंथ मान लीजिए जल जाए, जितने सारे अलग अलग प्रकार का साहित्य है या ज्ञान अर्जन करने के लिए जो किताब है ग्रंथ छपे हुए हैं, इस संसार के समस्त ग्रंथ जल जाए तब भी, लेकिन यदि भागवत रहे, एकमात्र भागवत रहे, तब भी कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर भक्ति सिद्धांत सरकार आगे कहते हैं कि यदि इस संसार के सारे स्कूल या कॉलेज या जितने भी शैक्षणिक विद्यालय है सब कुछ बंद हो जाए और केवल भागवत का श्रवण कीर्तन चलता रहे तब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सब कुछ बंद है और भागवत का मात्र श्रवण कीर्तन चल रहा है तब सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वही नहीं हो रहा है तो हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध है। जो प्रथम दो स्कंध, प्रथम और द्वितीय जो स्कंध है ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। तृतीय स्कंध जो पद्मपुराण के उत्तर खंड में लिखा गया है, और जो तीसरा और चतुर्थ स्कंध है वो भगवान की जांघें हैं। जो पंचम स्कंध है वो भगवान का नाभि कमल है। छठा और सप्तम स्कंध जो है वो भगवान के हाथ है। नवम स्कंध जो है वो भगवान का गला है। दशम स्कंध जो है भगवान का श्रीमुख है। 11वां स्कंध जो है भगवान का माथा है, और जो 12वां स्कंध है वो भगवान का सिर है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत मूर्तिमंत श्री कृष्ण ही है। निगम कल्पतरुकलितं फलं शुकमुखाद् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयम मुहुरो रसिका भो विभावुका। अब श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी तीसरे मंगलाचरण के श्लोक में रिक्वेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं कि रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे एक वृक्ष होता है, हमने उदाहरण सुना हुआ है, ऐसे वृक्ष होता है, इस आम का वृक्ष है, तो आम के वृक्ष में एक रस होता है, लेकिन वो रस हमें वो पत्ते खाने से नहीं मिलेगा, ना हमें उस उसके जो ब्रांचेस है, जो शाखा है, उसको तोड़कर अगर हम लोग खाएंगे उसमें वो रस नहीं मिलेगा। रस किस में मिलेगा? उसके फल में। लेकिन साधारण जो प्राकृत जो फल होता है उसमें छिलके होते हैं, उसमें भी कुछ कमियां हैं, छिलके होते हैं, उसमें बीज होते हैं, और पता नहीं उसमें से भी वो फल मीठा होगा या नहीं होगा। लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं कि रस के मर्मज्ञ भक्तगण, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और शुभदेव गोस्वामी रूप तोते के द्वारा चखा हुआ है। जब तोता किसी फल को चखता है तो वो मीठा बन जाता है, उसी तरह से शुभदेव गोस्वामी ने इसको चखा है और शुभदेव गोस्वामी के मुख से ही बांटा गया है। मेरे मुख से नहीं बांटा गया, मैंने नहीं बांटा है, ये शुभदेव गोस्वामी ने बांटा है इसको, और शुभदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है, इसलिए बहुत मीठा है। कितना मीठा है? और मीठा और इससे परम आनंद को देने वाला है। और इसका एक और एक क्या बोलते हैं कि इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, और अन्य कोई त्याज्य अंश भी नहीं है, त्याग करने जैसा कुछ नहीं है इस फल में। इसमें छिलका नहीं है, पूरी तरह से रस है, निकालो और खाओ। चैतन्य महाप्रभु ने अपने गौर लीला के समय एक बार चैतन्य महाप्रभु और अन्य जो भक्तजन थे वो नगर संकेतन करते हुए जा रहे थे, तो उस समय दो घटनाएं ऐसी हुई थी कि एक बार तो अचानक से बादल आ गए, घनघोर बादल आ गए थे और वर्षा होने वाली थी, तो ये लोग तो भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ संकेतन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल इशारा मात्र से वो बादलों को डाइवर्ट कर दिया। और फिर जब वो संकीर्तन खत्म हुआ तब उन लोगों को बहुत भूख लग गई थी, तो चैतन्य महाप्रभु के पास किसी ने आम का वो जो बीज रहता ना, कोए बीज वो ला कर दिया था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस आम के बीज को ऐसी लगा दिया जमीन में, और क्षण भर के अंदर ही वो तुरंत वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया और उसमें बहुत सारे आम लटकने लग गए। और उस आम की ही खासियत थी कि ना उसमें छिलका था, ना गुठली थी, ना उसमें कुछ भी त्याज्य नहीं था, कुछ भी त्यागने जैसा नहीं था, बस निकालो और खाओ। तो ये श्रीमद् भागवत एकदम वैसा है। और एक साल तक उस पेड़ ने सबको आम दिए, उसके बाद वो प्रकट हो गए। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर पान करते रहो, क्योंकि यह केवल पृथ्वी पर ही सुलभ है। अब किसी ने कोई प्रश्न पूछेगा कि ऊपर के लोकों में महाभारत है, ये है, वो है, वहां भागवत नहीं है? अरे वहां सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से निकला हुआ भागवत थोड़ी होगा। यहां पर ये जो कह रहे शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। एक बार जब ये घटना हो गई थी कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे, उस समय बहुत सारे देवता लोग, क्योंकि वहां पे सब जगह से लोग आए हुए थे, कि जितने सारे ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, सब जगह से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े ऋषि देवर्षि सब लोग आए हुए थे वहां पर देवता लोग भी पहुंच गए। देवता लोग क्या लेकर पहुंचे? अमृत का कलश लेकर पहुंचे, और सुखदेव गोस्वामी से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित साधन में मरने वाले हैं, तो हमें अमृत का कलश महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, हमारा गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट लेकर तो आप ये अमृत का कलश इसको पिला दीजिए, और आप इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने दीजिए। बिजनेस। सुखदेव गोस्वामी ने कहा उनको यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ, सारे देवताओं को भले यहाँ से भगाओ। ये भागवत कथामृत की तुलना एक साधारण अमृत के साथ ये लोग कर रहे हैं, तुरंत यहाँ से भगाओ। तो भागवत देवता लोग भी इसके अनाधिकारी थे, क्योंकि ये लोग भागवत की महिमा को ही नहीं समझ पाए थे कि भागवत क्या है। भगवान की कीर्ति और यश सब जगह है, अन्य 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 उच्च के लोगों में सब लोग भगवान की यश और कीर्ति गाते हैं, लेकिन श्रीमद भागवत की महिमा को वो लोग नहीं समझ रहे थे, इसलिए उनको भगा दिया गया। और इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये केवल पृथ्वी पर ही सुलभ है और इसका पान कीजिए, इसको पीजिए, अधिक से अधिक समय जीवन पूरा जितना भी शेष जीवन बचा है हमें उसका जो उपयोग है उसको भागवत के भागवत को सुनने में, भागवत को पढ़ने में और भागवत का कीर्तन करने में बिताना चाहिए। केवल इतना करने मात्र से हमें इसी इस शरीर के साथ हमें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे और इसी हृदय में हमारे भगवान की जो सारी दिव्य लीलाएं वो प्रकट हो जाएंगी। ये शरीर छूटने से पहले हम सिद्ध हो जाएंगे केवल भागवत के संपर्क में रहने से। यदि भागवत के संपर्क में ही नहीं रहेंगे तो भागवत कभी नहीं करेंगे। भगवान के धाम में जाना है तो भगवान के धाम में भगवान का प्रेमी भक्त भक्तों को प्रवेश है, साधारण भक्तों को प्रवेश, साधारण व्यक्तियों को प्रवेश नहीं है। वहां पर जाने के लिए भगवान से भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। तो भगवान के लिए प्रेम कैसे कैसे बढ़ेगा? तो भागवत को सुनने से। भागवत में भक्तों के चरित्र है, भगवान की कीर्ति है, भगवान का यश है, उसको बारंबार 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 सुनेंगे तो हमारे हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम उदित होगा। उनके लिए उनके लिए स्वाभाविक हमारे हृदय के जो कलमश है, जो गंदगी है, सब फट जाएगी और श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक निर्मल प्रेम उदित होगा। फिर हम लोग हमारा संबंध स्थापित होगा, हम लोग भगवान से बात कर सकेंगे, भगवान की लीलाओं को देख सकेंगे। और सहजता से जिस तरह से हम लोग वस्त्र बदलते हैं ना, उतनी सहज तरीके से हम लोग इस संसार को छोड़ के भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, अगर भागवत के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे निमिक्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार देवताओं और भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का समागम हुआ। वहां पर 88,000 ऋषियों ने एकत्रित हुए थे। कहां पर?
नैमिषारण्य
में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे और क्या कर रहे थे? एक सत्कर्म कर रहे थे, बड़ा अनुष्ठान किया था, बड़े बड़े यज्ञ उसमें यज्ञ में आहुति की जा रही थी और वो आहुति भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रही थी, विश्व के कल्याण के लिए की जा रही थी। लेकिन अभी नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है? अभी नैमिषारण्य क्षेत्र की अपनी एक महिमा है। इसे वायव्य तंत्र में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड के जो पिता है, ब्रह्मा जी है, उन्होंने एक विराट चक्र की कल्पना की थी और उस विराट चक्र को ब्रह्मा जी ने ऋषियों के कहने पर छोड़ दिया था और वो जाकर नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर वहां पर थम गया, रुक गया। तो जो उसी चक्र पर अब सारा ब्रह्मांड आज बैलेंस्ड है। तो वो जो स्थान है नैमिषारण्य, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी द्वारा वो जो चक्र भेजा गया है वो भी है, और एक और कारण है कि वहां पर जो ऋषि लोग यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, उससे जो असुरी प्रवृत्ति है संसार में, जो असुरी स्वभाव है, असुरी प्रवृत्ति, तमोगुण है, रजोगुण है, ये सब कम हो जाता था, उसका इतना प्रभाव था। वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था, वो ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु था वो नैमिषारण्य क्षेत्र था,
चक्रतीर्थ
कहा जाता है उसमें, सारे संसार का ब्रह्मा जी द्वारा व्यवस्थित है। और वहां पर ऋषियों की बहुत श्रद्धा होती थी और वहां पर यज्ञ करके सारे विश्व में शांति फैल जाती थी। ऐसे नहीं कि पहली बार यज्ञ करे, वहां पर कई वर्षों से, सालों से वहां पर ऋषि लोग सारे आके यज्ञ करते थे। चक्र का जो हब है, वो वही है वहां पर। तो बलराम जी की जो घटना थी, जो रोमहर्षण सूत को उन्होंने मारा था, वो घटना भी वही घटी थी। वहां पर ऋषियों की सभा जुटी थी, वहां पर रोमहर्षण जी वहां पर कथा कर रहे थे और बलराम जी तीर्थ यात्रा पर थे। देखिए कौरव और पांडव के बीच में जब निर्णय हो गया कि अब युद्ध होने वाला है, उस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए थे, श्री कृष्ण के पास। अर्जुन तो चरणों में बैठ गए और दुर्योधन जाके सिरहाने बैठ गए और दोनों इंतजार करते भगवान कब उठेंगे। तो भगवान उठ कर, भगवान ने उठते अर्जुन को देख लिया और अर्जुन ने कहो अर्जुन कैसे आना हुआ, द्वारका की बात है। तो बाजू में दुर्योधन का कृष्ण मैं भी आया हूँ, पहले मैं आया हूँ। तो कहो दुर्योधन कैसे आना हुआ। लेकिन दुर्योधन अर्जुन तुमसे छोटा भी है और मैंने देखा भी अर्जुन को पहले है, तो अर्जुन को मांगने दो। ठीक है कृष्ण तुम्हारी जैसी इच्छा। तो बोलो अर्जुन क्या करने आया है। प्रभु मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ, आप जानते हैं कि अब युद्ध छिड़ गया है, युद्ध होने ही वाला है, तो मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तरफ मेरी विशाल नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं निहत्ता, क्योंकि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा अरे कृष्ण अस्त्र नहीं उठाएगा, तो इस कृष्ण को लेकर मैं करूं क्या। तो अब चिंता, दुर्योधन को चिंता होने लग गई कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ना ले ले और एक निहत्य कृष्ण को हमारे पास ना छोड़ दे। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए,
हरी बोल,
आप रहेंगे तो ऐसे युद्ध को तो मैं ऐसे खेल खेल में जीत। तो भगवान, तो अर्जुन ने नारायणी सेना ही साक्षात नारायण को ही मांग लिया,
हरी बोल।
तो दुर्योधन ने मन में सोचा कितना बड़ा मूर्ख है अर्जुन, कितना बड़ा मूर्ख है। तो वो दोनों भगवान के आदेश, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप दोनों जाओ दाऊ जी का आशीर्वाद लेना, क्योंकि बड़े बड़ी समस्या थी भाई। क्योंकि कृष्ण का तो अर्जुन के लिए स्वाभाविक प्रेम जैसे दिखता था, वैसा ही बलराम जी का भी दुर्योधन के लिए प्रेम झलकता था। इसलिए कृष्ण ने कहा जाओ और तुम दोनों बलराम जी से आशीर्वाद मांग लो, क्योंकि अब तो बड़ा पेश था कि अगर कृष्ण वर्सेस बलराम ना हो जाए। तो अर्जुन को कहा जाते ही दाऊ को बता देना कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है, ठीक है, तो कहीं वो दुर्योधन का साथ ना दे दे। जाते पहले बता देना ये बात। तो वे लोग दोनों जाते हैं, दाऊ जी को प्रणाम करते कहे और कहा कि दाऊ भगवान कृष्ण ने तो युद्ध में हमारे साथ लड़ने का निर्णय किया है, आप किन की तरफ से लड़ेंगे। अच्छा भगवान कृष्ण ने निर्णय कर लिया कि तुम्हारे साथ होंगे। अच्छा देखो मुझे ये सब युद्ध भिन्न में कोई इंटरेस्ट है, मेरी तो इच्छा ही नहीं है कि पारिवारिक लोग आपस में युद्ध करें, तो मैं तो तीर्थ यात्रा में जाने वाला हूँ, जब आप लोगों का युद्ध खत्म हो जाएगा तब मैं आ जाऊँ। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तो तीर्थ यात्रा पे गए और क्या किया, यहाँ पर नैमिषारण्य में पहुंचे। नैमिषारण्य में कथा चल रही थी, पुराणों की कथा चल रही थी और वहां पर रोमहर्ष सब लोग जैसे बलराम जी आए तो सब लोग उठ गए। तो जो व्यास आसन पे जो रोमहर्षण जी बैठे थे, अब सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण सूत वो नहीं खड़े हुए। अब बलराम जी को क्रोध आ गया, उन्होंने घास का तिनका उठा के उनका मस्तक काट दिया। अब तो बड़ा कांड हो गया। ऋषियों ने बहुत प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दिया था उस रोमहर्षण सूत को, चिरंजीवी अमर सब कुछ और बुद्ध सब प्रकार के आशीर्वाद देकर उसको व्यासासन बिठाया था और यहाँ पर बलराम जी ने वो सब चौपट कर दिया। तब सारे ऋषि बोलने लगे कि आपने हमारी बात ही झूठी कर दी। मतलब आप भगवान है, सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हमारी बातों की भी तो वैल्यू है ना, तो आपने तो पूरा प्लान ही चौपट कर दिया, अब हमें कथा कौन सुनाएगा। तो बलराम जी फिर से जीवित कर दूं, बोला ना ना ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। तो बलराम जी बोले कि प्रायश्चित बताओ और करना क्या है बताओ। बोला उसका निर्णय आप कीजिए, प्रायश्चित तो आपको ये करना है कि दोबारा सब जब सारे तीर्थों में घूमना है आपको और इस किए हुए पाप का प्रायश्चित करना है। वो तो
लीला मात्र,
लीला मात्र के लिए, तो बलराम जी को फिर से तीर्थ यात्रा कंटिन्यू करवाने की बात थी। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, इनका जो पुत्र होगा वो मेरा कृपा पात्र होगा, वो आगे जाके भागवत सुनाएगा, वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत भी सुनेगा और आगे जाके भागवत का प्रचार भी करेगा। तो इनका जो पुत्र होगा मेरा कृपा पात्र होगा, आप सबका आशीर्वाद उनके पुत्र को लगेगा और मेरा भी रहेगा, मेरा भी आशीर्वाद इसके साथ रहेगा। सुत गोस्वामी का बलराम जी सब यात्रा खत्म करके जब अंत में वहां पहुंचे, दुर्योधन और भीम की विषय लड़ाई चल रही, वहां पर दाऊ जी पहुंचे अंत में, और दाऊ जी फिर आवेश में आके बोले, भीम तुम ये वो गौलंघन मत करो। तो भगवान ने कहा टॉन्ट मार दो, क्यों नैमिषारण्य में जाकर आपको साधुओं का वध करना अलाउड है और यहाँ पर धर्म, यहाँ पर क्या क्या हुआ 18 दिनों में आपको मालूम है नहीं ना, तो आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, आप जाइए यहाँ से। इस तरह से भगवान ने बहुत बड़े टॉन्ट मार दिया था उस समय कि आप यहाँ पर तो युद्ध में, यहाँ के युद्ध में आपको तो दूर रहना है और वहां पर जाके आपको साधुओं का वध करना है, तो ये आप चले जाइए यहाँ से, यहाँ से इस तरह की मानसिक वाले हम लोगों को नहीं चाहिए, आप चले जाइए। नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि लोग यज्ञ करते हैं, तो यहाँ पर भी जो शौनक आदि ऋषि है 88,000 ऋषि थे वहाँ, यहाँ पर एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे थे, किसके लिए, लोक कल्याण के लिए। ऋषि वास्तव में मनुष्यों का कल्याण जानते हैं, क्योंकि मनुष्य जो साधारण मनुष्य रहता है, बद्ध जीव रहता है, वो लोग तो अज्ञान में रहते हैं, अपने सांसारिक कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन उनका उद्धार और सांसारिक कार्य में लगे रहने के कारण कला होता है सब जगह पर, जितने भी अगर कला देखेंगे स्त्री के वजह से होता है, धन के वजह से होता है, तो ये कला संसार में हमेशा चलता रहता है, शांति नहीं होती। आज भी देखिए अगर आप ध्यान पूर्वक अगर आप न्यूज़पेपर या गूगल या किसी भी सहायता से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आज विश्व भर में सब जगह क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कई लोग मर रहे हैं, कई लोग मारा जा रहा है, कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे हमारे पड़ोसियों की बात कर लो, कितने सालों से युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान में, तो इस तरह से कलह ईर्षा द्वेष इस तरह से संसार में चलते रहते हैं। तो ये ऋषि लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में जो यज्ञ कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, परम शांति के लिए, शांति के लिए कर रहे थे, विश्व में शांति फैल सके इसलिए समस्त लोगों ने कल्याण हेतु वे कि भगवान के लिए यज्ञ करेंगे तो उससे समस्त संसार में शांति फैल जाएगी। कैसे शांति फैलेगी, लोगों की मानसिकता जो है उसमें जो रजोगुण तमोगुण भरा है वो कम हो जाएगा, वो सत्वगुण में हो जाएंगे। तो ये यज्ञों का असर होता था, आजकल भले ऐसे आजकल संकीर्तन यज्ञ का असर होता है और बाकी सब किसी यज्ञों का असर नहीं होता। रूपा जी ने कहा था कि यदि हम लोग मुफ्त में प्रसाद भगवान का प्रसाद बांटेंगे और खूब संकीर्तन करेंगे तो इससे जो क्राइम रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत तो प्रसाद खाएंगे और भगवान का नाम सुनेंगे तो उनके हृदय में उनका जो चित्त है वो निर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, द्वेष भावना सब खत्म हो जाएगी, जो भी पाप ताप है सब कट जाएंगे उनके भगवान का नाम जब सुनने से, भगवान का कीर्तन और भगवान का प्रसाद खाने से। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था ऐसे इस तरह से। तो एक दिन उन लोग इस तरह से यज्ञ कर रहे थे, उसी समय वहां पर सुत गोस्वामी वहां पर आ गए। यज्ञ इत्यादि उनका चल रहा था, अकस्मात वहां पर सुत गोस्वामी आ गए और सब 88,000 के 88,000 सारे ऋषि वहां पर, समस्त 88,000 ऋषि खड़े हो गए उनके सम्मान के लिए, उनको दंडवत प्रणाम किया। सुत गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के बाजू में बैठकर भागवत सुना था। बहुत सारे ऋषियों का समाज जुटा था लेकिन सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत कह रहे थे। तो भागवत प्रारंभ करते समय 12वें स्कंद में ये श्लोक एक वर्ष है, एक श्लोक है, मुझे ढूंढ रहा था, मुझे स्मरण मिल नहीं रहा था, लेकिन वर्ष मैंने पढ़ा है कि सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को पास बुलाया और कहा परीक्षित के बाजू में बैठी है और तब उन्होंने भागवत का वर्णन किया। तो जितनी एकाग्रता से परीक्षित महाराज ने भागवत को सुना है उतना ही एकाग्रता से सुत गोस्वामी ने भागवत सुना है। और सुखदेव गोस्वामी ने आदेश दिया सुत गोस्वामी को, जाओ नैमिषारण्य में ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और वहां उन लोगों को भागवत सुना देना जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। तो वो आदेश पाकर सुत गोस्वामी वहां गए थे, और जैसे वहां पर गए तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा आसन दिया, उनको बैठाया और उनकी विधिवत पूजा की। जैसे भगवान की हम लोग आराधना करते हैं, भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से उन्होंने सुत गोस्वामी का आदर सम्मान की, उनकी पूजा की, आरती, दीप, कमल, पुष्प 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 और उनके चरण अभिषेक किया होगा। तो इस तरह से उन्होंने आदर सत्कार के उनको खूब सम्मान दिया। और ऋषियों ने कहा, ये सब करने के बाद ऋषियों ने कहा, हाथ जोड़कर उनके जो प्रतिनिधि थे शौनक आदि ऋषि, उन्होंने कहा, देखिए 88,000 ऋषि जब बैठे हो और मान लीजिए किसी को प्रश्न पूछना हो तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। क्लास में बैठे हैं और आज का सेशन मान लो खत्म हो जाता है और 88,000 लोग बैठे हो तो अगर हर एक को प्रश्न पूछना है तो कैसे हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए 88,000 ऋषियों की तरफ से एक प्रतिनिधि चुना गया शौनक जी, और शौनक जी 88,000 ऋषियों की तरफ से प्रश्न पूछते थे सुत गोस्वामी को और सुत गोस्वामी को उत्तर देते थे। तो ये हमारी भागवत परंपरा है प्रश्न और उत्तर की। महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने उसको उत्तर दिया। मैत्रेय जी को विदुर जी ने प्रश्न पूछा, मैत्रेय जी ने उसका उत्तर दिया। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को प्रश्न पूछा, नारद जी ने उत्तर दिया। उद्धव संवाद में भी उद्धव जी ने भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान ने जवाब दिया। अर्जुन और भगवान के बीच में भगवद गीता के रूप में जो प्रश्न उत्तर ही है ये। तो सुद गोस्वामी ने कहा कि आप निष्पाप है, आपने समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है और उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यह सुत गोस्वामी को निष्पाप कहा गया है। देखिए हमारे कुछ आचार्य अपने टीका में लिखते हैं कि उस समय कुछ लोगों ने सुत गोस्वामी को शायद से स्वीकार नहीं कर रहे थे, मतलब उस सभा में नहीं, लेकिन जो 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 कर्मकांडी लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते, तथाकथित लोग होते हैं, वे लोग शायद से सुत गोस्वामी को एक ब्राह्मण के रूप में या एक आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्रिटिसिज्म हो रहा था। इसलिए वेदव्यास जी ने यहाँ पर ये जो शौनक आदि ऋषियों का जो वाक्य है कि आप निष्पाप है, हे सुत गोस्वामी निष्पाप है, आप में कोई किसी प्रकार का पाप नहीं है, आप परम भागवत है, परम भगवान के प्रेमी भक्त है, तो उसमें निष्पाप शब्द को यहाँ पर वेदव्यास जी हाईलाइट करते हैं। वेदव्यास जी ने जानबूझकर उसको लिखा था कि ये बताने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषियों का ये निर्णय था और वो समझ रहे थे कि सुत गोस्वामी जो है वो निष्पाप है, क्योंकि उनका जो पिताजी थे उनका शायद जन्म में कोई संदेह था किसी को या किसी को, तो एक प्रकार की चर्चा थी उस समय कि सुत गोस्वामी को आचार्य क्यों बनाया गया। तो सुत गोस्वामी को आचार्य सुखदेव गोस्वामी की कृपा से और बलराम जी की कृपा से और वेदव्यास जी की कृपा से और अन्य कई साधुओं की कृपा उनको प्राप्त थी, इसलिए वो आचार्य है। तो सुखदेव गोस्वामी जो वैष्णव के मुकुट मणि है उनकी कृपा से, बलराम जी की कृपा से इस तरह से सुत गोस्वामी जो है वह आचार्य है। अभी शौनक आदि ऋषि आगे उनको ग्लोरिफिकेशन करता है। देखिए ये है पद्धति भागवत को समझने की, किसी को कितना सम्मान देना चाहिए। भागवत ऐसे नहीं मैनिफेस्ट होता है, भागवत या भगवान श्री कृष्ण को अगर हमें प्राप्त करना है और गुरु से प्राप्त करना है तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। गुरु अपने मन से शिष्य के मन में कृष्ण को ट्रांसफर करते हैं, तब जाके हमें कृष्ण मिलता है। हमारा मन जो है वो कृष्ण को नहीं पकड़ सकता, लेकिन गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं, क्योंकि उनके हृदय में तो कृष्ण बंदी है, तो वे चाहे तो हमें कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। तो कैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमें नम्रता होनी चाहिए, साधुओं के लिए सम्मान होना चाहिए, उनके लिए आदर होना चाहिए, उनके लिए इस ये दीन भावना होनी चाहिए। अब ये दीन भावना, अभी शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार वेदव्यास के ज्ञान के से अवगत है, और आप अब अन्य मुनियों को भी जानते हैं कि सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से निष्णात हैं। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, आपको इन सारे साधुओं की कृपा प्राप्त है, सुखदेव गोस्वामी की, आपको वेद व्यास की कृपा प्राप्त है, दाऊ जी की, बलराम जी की कृपा प्राप्त है, और इसके अलावा भी आप सिर्फ कृपा पात्र नहीं है, इसके अलावा भी आप एक ज्येष्ठ विद्वान है, आपने सारे शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है, खूब अच्छी तरह से आपने अध्ययन किया है, और सिर्फ वैष्णव शास्त्रों का नहीं, अन्य शास्त्रों का भी आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और आपको सारे शास्त्रों का सार मालूम है, सारे शास्त्र क्या कहते हैं, तो ये सब कुछ, इस सारी जानकारी आपको है। और एक और विशेष बात है कि आप इन साधुओं की कृपा पात्र है, आपने इन साधुओं की अच्छे से सेवा की है, और इसी कारण से हमें विश्वास है कि इन्होंने गोपनीय से गोपनीय बात आपको बताई होगी, इसलिए हम आपके चरणों में विनती करते हैं कि आप कृपया करके हमें क्या कीजिए, भगवान की उन दिव्य लीलाओं की दिव्य लीलाओं को बताइए हमें, गुड़ से गुड़ रहस्य जो आपने इन साधुओं के मुख से सुने हैं वो हमें बताइए। विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर कहते हैं कि मैं अपने गुरु को गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूं, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को तुष्ट कर सकता है, यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं होंगे, आत्मा साक्षात्कार तो दूर रहा, आत्मा साक्षात्कार तो दूर की बात हो गई, अगर हमारे गुरुदेव प्रसन्न नहीं है हम पर, उनकी प्रसन्नता हमारे जीवन में नहीं है, तो आत्मा साक्षात्कार भूल जाओ, किसी भी तरह के से हम लोग इस संसार बंधन को पार नहीं कर सकते। यह बहुत आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे, उनकी प्रसन्नता क्या है, उनके आदेशों का पालन करना, अगर वह कहते हैं भागवत पढ़ो तो भागवत को पढ़ना चाहिए, अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो देखिए अभी प्रश्न उठेगा कि उनको पता कैसे लगेगा हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि भैया आपके हृदय में जो आपके हृदय में परमात्मा है ना, वही वो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, जो गुरु है, एक चैत्य गुरु है, चैत्य गुरु ही गुरु का रूप धारण करके जीव के सामने प्रकट है, तब हम अपने जब गुरु के सामने जाते हैं तो वो हमारे एक्सप्रेस सरिंग से पता चल जाता है कि हमारी चेतना क्या है, हमारे संसार में अब तक कितनी आसक्ति है, हम लोग कितने टीवी में कितने मूवीज देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, हमारी कितनी सब कुछ उनको पता चल जाता है। जैसे आपको आप लोगों के टेक्नोलॉजी का उदाहरण देता हूं, जैसे क्लाइंट के ऑफिस में एक कंप्यूटर है और एक हेड ऑफिस में एक सर्वर है, तो जब डेटा ट्रांसफर करना होगा तो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और डेटा ट्रांसफर हो जाता है, राइट। उसी तरह से परमात्मा हमारे हृदय में है तो वो सारी बातें वहां पर उनको पता चल जाती है, कृष्ण ही है ना वो, तो शिष्य सामने आ जाता है तो भगवान हृदय में है तो वो साक्षात गुरु साक्षात कृष्ण ही है, गुरु के रूप में है, तो उनको सारी जानकारी हो जाती है कि इसकी का आसक्ति ज्यादा है, तो वो अपने शिष्य को कुछ आदेश देते हैं, उसकी आसक्ति उसकी स्थिति के अनुसार गुरु उस शिष्य को आदेश देते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो हमें पालन करना चाहिए, इससे हम लोग हमारे संसार की आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे, और वो आदेश हमें बहुत आदर पूर्वक और अपने जीवन में सब कुछ मानकर उस आदेश को स्वीकार करना चाहिए। Those instructions should be our life and soul. जब तक हम लोग अपने गुरु के वचनों को इस तरह से अपना जीवन सर्वस्व नहीं मान लेते तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। श्रील सुत गोस्वामी में शिष्य के इन सारे गुण से उत्प्रत थे, अतः इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, हे सुत गोस्वामी आप कृपा पात्र शिष्य है, आप सद शिष्य है, इसलिए आपको अपने गुरु जनन से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, इसलिए आप हमें वो दिव्य ज्ञान दीजिए। हे सुत गोस्वामी, आप तो संत समाज के भूषण है और आज कलयुग है प्रभु, आज कलयुग है, आज हम लोगों की दशा क्या है, हमारी आयु कम है, साधन करने में हम लोगों की रुचि नहीं है, है बताइए रंगभूषण प्रभु।
यस प्रभु,
शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि हमारी आयु कम है, ठीक है, साधन करने में हमारी रुचि नहीं है और प्रवृत्ति भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, दो चार दिन मंगल, दो चार दिन सुबह सुबह उठ लेंगे और कर लेंगे, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है साधन कर, साधना करने की, और लोग आलसी हो गए हैं, हम लोग इतने आलसी हैं, हम खुद जानते हैं, पिक्चर देखने जा रहा हूँ तुरंत उठ पड़ेंगे और एकदम रुचि आलस से सब हट जाएगा, अगर कोई पिक्चर देखना है तो हमारा आलस हट जाएगा, हमारा क्या कहते हैं कि उत्साह भर जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, जोश आ जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का कीर्तन कथा करने के लिए उत्साह नहीं आएगा, तो ये किसकी वजह से है, ये कलयुग की वजह से है, हमारी बुद्धि मंद हो गई है, समझ थोड़ी सी हो गई है, और साथ ही साथ इतना सब है, आयु कम है, आयु कम है, प्रवृत्ति नहीं है, रुचि नहीं है, आलसी हो गए, भाग्य मंद है, इतना सब होने के बाद भी क्या है, नाना प्रकार के विघ्न बाधा से हम लोग घिरे हुए हैं, इतनी सारी विघ्न बाधा है हमारे जीवन में, पैसे की कमी है, ये कमी है, कोई हमारी बात नहीं मानता है, ससुरा सास ससुर वाले बात नहीं मानते हैं, तो ये अलग 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 ये सब विघ्न है जो हमारे हमारे दैनिक जीवन में हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो हमारे लिए तो विघ्न है, तो इस कारण से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं और उस कारण से हम लोग अपना कृष्ण भावना में जीवन भी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो ये सब कलयुग के दोष है। उसके बाद शास्त्र भी बहुत से हैं, बहुत सारे शास्त्र है, इतने हजारों हजारों शास्त्र, यदि आप वृंदावन जाएंगे और खंडेलाल की दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने सारे शास्त्र है, अलग अलग बाबाओं के फोटो भी लगे हुए हैं और बहुत सारे ग्रंथ भी है, कौन सा ग्रंथ पढ़े, इतने सारे हजारों ग्रंथ है, इसमें हजारों बातें लिखी गई है, अरे कौन सा ग्रंथ पढ़े, ये शौनक आदि ऋषि व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, और उन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की बातें कही है, ये करो, कर्म करो, ज्ञान योग करो, ध्यान योग करो, अष्टांग योग करो, ये करो वो करो, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की बातें कही गई है। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप परोपकारी है, अपनी बुद्धि से आप हमारे लिए सारा सार निकाल कर हमको दे दीजिए, हमको ये झंझट में नहीं पढ़ना है, इतने सारे शास्त्र पढ़कर कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, इससे अच्छा है कि हे गुरुदेव आप हमें क्या कीजिए, सारा सार निकल कर आप हमें समझा दीजिए, मुख्य रूप से हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए इस कलयुगी जीवों को, हमारा भी उद्धार हो जाए और आगे आने वाले भविष्य में जो कलयुग में जो लोग आने वाले उनका भी उद्धार हो जाए, इसके लिए कोई उपाय कीजिए, बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आपन ना संस्कृतम घोरा यन्नाम विवशो भ्रणन तथा सद्य विमुच्चेत यद भी भेदी स्वयं भयम। हे प्यारे सूजी, जब जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है, इस स्थिति में यदि वह भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों से भगवान शौनक आदि ऋषि से कहते हैं कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि भक्त भक्सल भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया, इसका पहले कारण जानना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि हमें विश्वास है कि भगवान अगर अवतार लेते हैं तो वो भक्तों का उद्धार करने के लिए होता है, जो दुष्कृत रहते हैं या फिर जो दुराचारी लोग रहते हैं उनका वध करना तो एक कारण रहता है, लेकिन उनका मुख्य प्रयोजन ये होता है कि भक्तों को सुख देना, विविध प्रकार के लीला करके भक्त लोग सुखी हो जाए, उनका ये मुख्य इच्छा होती है। इसलिए भक्तों के लिए आते हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, विविध प्रकार की लीलाएं करने के लिए कि भक्त उसका आस्वादन कर सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो और भगवान के गुणों को और गाते हुए ये शोलक आदिऋषि श्लोक कह रहे हैं कि आपन न संस्कृतम घोरा यन्ना विवश घृणन तथा सद्य विमुच्चेत यद्भि भेति स्वयं भयम्। यहाँ पर कहा गया कि एक बार भी यदि कोई भगवान का नाम उच्चारण कर ले जान में अनजान में या किसी या अकस्मात भगवान का नाम उच्चारण निकल जाए तो उससे उसका संसार बंधन कट जाएगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएगा। अभी श्रील प्रभुपाद इसके पर्पण में लिखते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि जब कृष्ण का नाम और कृष्ण से अभिन्न है। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि क्योंकि स्वयं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है, इसलिए जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है तब समस्त भय भाग जाते हैं। हम जानते हैं ना, नारायण कवच पढ़ते हैं, नरसिंह कवच पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, इन सारे कवचों में भगवान का नाम है। तो नाम, वो नाम अलग विविध कवच के माध्यम से भगवान का नाम उच्चारण करने से जितने सारे जो हमारे भय है हृदय में, जो भय हो जाता है वो नाश हो जाता है, क्योंकि हम नारायण कवच धारण करते हैं। नारायण कवच में क्या है, भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम जप करने से हमारा जितना सारा जो भय है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं कि इस बात का, क्योंकि भय भी साक्षात भयभीत रहता है, अविचारिक जो भय वो भी भयभीत हो जाता है, कब, जब कोई नाम उच्चारण कर लेता है तो तुरंत वो उसको छोड़ देता है। इस बात का सूचक है कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के समान ही शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में बिल्कुल अंतर नहीं है। अतः बड़ा से बड़ा जब संकट हम पर जीवन पर आ जाए तो हमें भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। जो नंद बाबा भी जब वसुदेव जी को मिलकर जब लौट रहे थे, कहाँ लौट रहे थे, गोकुल की तरफ, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने जब ये बताया कि जाओ, वसुदेव जी ने बताया कि नंद बाबा आप तुरंत चले जाओ, वहाँ पर ब्रज में बड़े उत्पात होने वाले हैं, तो उस समय नंद बाबा ने भी भगवान का ही आश्रय ग्रहण किया, भगवान के नामों का ही उच्चारण करना चालू किया। उन्होंने अपने पुत्र को स्मरण किया और भगवान विष्णु के नामों का जप किया कि हे भगवान नारायण, निरंतर जप करते थे। तो हमेशा जब भय की स्थिति आ जाती है उस समय भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए, तो वो भय हट जाएगा। पहले जो छोटे छोटे हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हम लोगों को ये शिक्षा दी जाती थी कि राम रक्षा स्तोत्र पढ़ो या अन्य अन्य चीजों, भगवान राम का नाम लो, बच्चों को सिखाया जाता था। आजकल दुर्भाग्य की बात है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी वो फोन में अलग अलग प्रकार के वीडियोज देखते रहते हैं, तो पहले जैसे संस्कार नहीं रहे। तो सूत जी से वे कहते कि हे सूत जी, आप परम विरक्त है और परम शांत है और आपका चित हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। और वे कहते हैं कि आपके आपके स्पर्श मात्र से, आपके संपर्क में आ जाने से हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। और वे कहते कि गंगा जी जैसे नदी के संपर्क में रहने से कितना समय तक गंगा जी का सेवन करने से पवित्रता आती है। गंगा जी पवित्र करती है, कितने समय तक, बहुत समय तक यदि गंगा जी का सेवन किया जाए तब जाके पवित्रता आती है। लेकिन साधुओं के संपर्क में हम लोग रहने मात्र, उनके केवल दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। अब विचार कीजिए, जब आप किसी कथा में 6 या 7 दिन की जो कथाएं होती है उसमें बैठते हैं और रोज भगवान के बारे में सुनते हो, भी किसी शुद्ध भक्त से सुनते हैं, तो उससे आपके चित्त पर गहरा असर होता है, बहुत गहरा असर होता है। हृदय की जो क्या बोलते हैं, गांठें है ना, गांठें वो खुल जाती है। हमारे जो अनर्थ है, जिस कारण से हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम लोग ऐसे साधुओं के संग में बैठ जाते हैं और उनके उनसे उपासित महामुनि ऐसे महामुनियों के संग बैठते हैं और उनसे कथा श्रवण करते हैं, तो उनकी संगति से हमारा जो हृदय की जो ग्रंथियां है, गांठें है, ये जो हम जो हमारी बुरी आदतें हैं जो हमारे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है वो समाप्त हो जाएगी. लेकिन ऐसे साधुओं के सामने बैठ के उनसे सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, एकाग्र चित्त होके पूरी तरह से समर्पण भावना से ऐसे साधुओं के सामने बैठना चाहिए, तब जाके उस तो तब हमारे चित्त पर गहरा असर होगा. तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि कह रहे कि गंगा जी का सेवन किया जाए तभी वो पवित्र, गंगा जी का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब जाके पवित्रता आती है. लेकिन आपके आपके केवल दर्शन मात्र से ही हमारा हमारा उद्धार हो गया. तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान है. गंगा जी तो शक्तिमान है, गंगा जी तो भगवान के चरणों की धोवन है, और लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान है. गंगा जी खुद जब गंगा जी संसार में आ रहे, गंगा जी की संसार में आ रहे थी तो भगीरथ जी से कहती है कि भगीरथ मैं तो आ रही तुम्हारी इच्छा से, लेकिन ये सारे जो संसार के पापी लोग हैं जब ये मेरे मेरे अंदर नाएंगे और अपना सारा पाप मुझमें छोड़ेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊंगी. तो भगीरथ जी कहते हैं कि माँ चिंता मत करो, या भगवान श्री हरि के अकिंचन भक्त यहाँ पर घूमते रहते हैं, वो आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे और तुम्हारा सारा पाप जो है वो नष्ट हो जाएगा. तो गंगा जी भी अपने भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए तरसती है, क्योंकि उसके संपर्क में आने से उसके अंदर जो सारे जीवों ने पाप छोड़ के जाते हैं वो नष्ट हो जाता है. अब बताइए महिमा किसकी ज्यादा है, भगवान के भक्तों, भगवान महाभागवतों की महिमा है या गंगा जल की. गंगा जल तो पवित्र करती है काफी समय तक सेवन करने के बाद, लेकिन यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से शीघ्र चित्त पवित्र हो जाता है. क्यों प्रश्न उठे, क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के चरणों में ही रहते हैं. अथा जो व्यक्ति शुद्ध भक्तों को अपना, तो हमारा क्या कर्तव्य है, ऐसे शुद्ध भक्तों को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को उप प्रभु कहा गया है या सेवक भगवान भी कहा गया है. सेवक भगवान कहा गया है. शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान तुल्य मानता है. हम गुरु प्राकृत दृष्टि से देखा जाए तो गुरु के शारीरिक शरीर में कोई दोष हो सकता है या रोग हो सकता है, लेकिन शिष्य को पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, जानना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है भगवान का नित्य परिकर है. जब ये भावना वो अपने अपने गुरु में रखेगा तो इससे शिष्य का जल्दी लाभ होगा. लेकिन यदि साधारण मनुष्य बुद्धि रखकर अगर गुचरो गुरु है मेरे, लेकिन ये साधारण मनुष्य है, ये भावना में और एक भावना में कि शिष्य जान रहा है कि ये भगवान के परिकर है, भगवान के धाम से मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं, मेरे हृदय में जो व्यक्ति है वही गुरु रूप के सामने मेरे पास, ये जब विश्वास हो जाता है शिष्य को, तब तो उसका आध्यात्मिक जीवन राजधानी की स्पीड से आगे बढ़ता है. लेकिन जब ये विश्वास रहेगा, जो विश्वास हो जाएगा अपने गुरु पर, विश्वास हो जाएगा ये भगवान का परिकर है, मेरा उद्धार करे, तो तब उन और उनके आदेशों का पालन, उनके जो आदेश दिए गए वो जब तुम्हारे जीवन सर्वस्व हो जाएंगे. जीवन सर्वस्व कब हो जाएंगे, जब उनमें भगवत बुद्धि होगी. ऐसे उनके आदेशों को जीवन सर्वस्व नहीं बना पाएंगे आप, जब हम लोग अपने हमारे हृदय के धरा कुछ हृदय में जो अच्छा ऊंचा आसन लगाकर जब तक हम लोग उन साधुओं को नहीं बिठाएंगे और उनकी हृदय में पूजा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उनके आदेशों को सीरियसली लेने वाले नहीं है, तब तक हम लोग कोई भागवत नहीं पड़ेगा. जब साधु कह रहा भागवत पढ़ो तो भागवत पढ़ो, लेकिन उनके उनके शब्दों की कीमत उसी व्यक्ति को होगी जो उनको हृदय से भगवान, जो उसी शिष्य पर होगी जो उनको भगवान का परिकर मानता है. विश्वास होना चाहिए, वे तो है साधु, तो भगवान के परिकर नित्य परिकर है, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास बहुत आवश्यक है.
ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। इन भक्तों की महिमा इसलिए है क्योंकि 2400 घंटे भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं, 2400 घंटे, एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण इनको नहीं होता है। तो जब ऐसे साधुओं के संपर्क में आ जाएंगे जो 2400 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, तो ऐसे संपर्क में आने से, ऐसे साधुओं के संपर्क में आने से क्या होगा, कृष्ण 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 की कथा होगी। तो कौन ऐसा दरिद्र जीव होगा जिसको अपने आत्मशुद्धि की बिल्कुल नहीं पड़ी, जो ऐसे साधुओं के संपर्क में आने से कृष्ण कथा ना सुनना चाहेगा। तो हमारे हृदय में लालसा होनी चाहिए, क्या लालसा होनी चाहिए, साधु संग करने की लालसा होनी चाहिए, ऐसे शुद्ध भक्तों को संपर्क में, ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने की लालसा होनी चाहिए, तभी हमारा उद्धार संभव है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि भगवान से दो चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, एक तो शुद्ध वैष्णव की संगति, शुद्ध वैष्णव की संगति के लिए प्रार्थना, और दूसरी उनके चरण कमलों में प्रेम भक्ति के लिए प्रार्थना। ये बहुत आवश्यक है, ये प्रार्थना हमारे अंदर जो लालसा है उसको बढ़ाएगी, डिजायर होनी चाहिए। आपको शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त होगा तब जब आप चाहेंगे। कितनी बार मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ होगा कि यार भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं लेकिन उन्होंने कुछ सपोर्ट किया नहीं, लेकिन जब हमने वे इच्छा व्यक्त की कि हमें हे प्रभु आपका भजन करना है, तब फिर उन्होंने हृदय से सारी, तब उन्होंने वो हृदय में, तब वो फिर उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। अदरवाइज हमारे हृदय में रह के भी कुछ नहीं करता। तो जब हमारे हृदय में लालसा होगी कि हमें शुद्ध वैष्णव की संगति करनी है, तब वो व्यवस्था करेंगे और हमें ऐसी संगति में देंगे जिससे हमारे जो कृष्ण कॉन्शियस लाइफ वो फास्ट ट्रैक पे चले जाएंगे उनके साथ। तो साधुओं की संगति से ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो ऐसे और गृहस्थ जीवन में तो ये होना चाहिए। गृहस्थ लोग तो ज्यादा जाल में है। हम लोग 2400 घंटे विषयों के संपर्क में रहते हैं। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी लोग विषयों के संपर्क में नहीं रहते, हम गृहस्थ लोग सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं। इसलिए हमें साधु संघ की बहुत लालसा होनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग बहुत विकट स्थिति में है, हम लोगों की सिचुएशन बहुत खराब है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन से दूर दूर चले जाएंगे। तो ये हमें लालसा होगी हृदय में भगवान और शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होगी, तब तो हमारी गाड़ी अच्छे से चलती रहेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति में रखिए, हमें आपके चरण को प्रेम भक्ति चाहिए जो केवल शुद्ध भक्तों से मिल सकती है, उनकी संगति हमें बहुत आवश्यक है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जैसे नारद आदि जो जितने साधु लोग हैं, ये हमेशा ऐसे भगवान की कीर्ति और यश को गाते रहते हैं। तो बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं, आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं को अब वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने आप को छुपाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी ऐसी लीलाओं में देखा होगा हमने कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज के घर में, यदि युधिष्ठिर महाराज के घर में कोई फंक्शन होता था तो भगवान श्री कृष्ण खुद साधुओं का झूठा पत्थर उठाने का काम करते, क्यों प्रभु जी, साधुओं का पत्थर उठाने का काम करते थे। और क्या करते थे, साधुओं के जूतों को साफ करते थे। जो बड़े बड़े ऋषि लोग जो सारे लोग नहीं जानते थे भगवान कृष्ण के रहस्य को, लेकिन जो लोग जानते थे ना कि अरे भगवान श्री कृष्ण मेरी थाली उठाने आए हैं, और वो जानता है कि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक साक्षात श्री कृष्ण ये इतनी छोटी सेवा कर रहे हैं, जब वो देखते तो वो अचंभित हो जाते थे, लेकिन वो उनको करने देते थे क्योंकि इसी से उनको सुख मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने, एक ड्राइवर का काम किया। ड्राइवर का काम क्या आज एक बहुत बड़ा कार्य है? नहीं, ड्राइवर का काम एक बहुत हीन कार्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना स्वीकार किया। घोड़ों, अर्जुन के घोड़ों को खुद साफ करते थे, वो खुद साफ करते थे, उनको नहलाना पिलाना खिलाना पिलाना। इस साथ जब आपका आपके घोड़ों के साथ खिलाना पिलाना का संपर्क रहेगा तब युद्ध में आपकी बात मानेंगे। तो सारथी का घोड़ों के संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। युद्ध भूमि में उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो घोड़े सारथी की बात माननी चाहिए। इसलिए सारथी का घोड़ों के संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। तो उनके साथ उनको खिलाना पिलाने से उन लोग का एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो भगवान ये छोटा सा कार्य भी करते थे, इसलिए साधारण अधिकतर लोग उनको यही समझते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति है। लेकिन शौनक आदि ऋषि ये रिक्वेस्ट करे कि हमें उन भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं को सुनना है जिन्होंने बलराम, जो मनुष्य जैसी साधारण लीलाएं करते हैं लेकिन बलराम जी के साथ उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे लीलाएं की है जिससे विश्वास हो जाता है कि ये भगवान है। जैसे बहुत सारे असुरों का वध करना, तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं। तो कलयुग को आया देख जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। और जैसे ही सूत गोस्वामी वहां पर आ गए थे, उन्होंने क्या किया, यज्ञ बंद कर दिया। उन्होंने आपस में एक दूसरे कहा कि अभी ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ एक भक्त कवि है, उन्होंने कहा कि वो सारे साधु लोगों ने जाकर बाल्टी भर पानी लेकर आके यज्ञ को बुझा दिया। एक कवि है भक्त, उनको उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया है कि सूत गोस्वामी बोले थे आप यज्ञ कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें आपके, आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनी है, हमें वो आप साक्षात यहां पर आ गए, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिद्धि हो गई कि हमें आपके दर्शन मात्र हो गए और आपके आपसे सुनने का अवसर प्राप्त हो, ये हम अवसर खोना नहीं चाहते। तो ये तो उन्होंने तुरंत के तुरंत यज्ञ बंद कर दिया। तो देखिए 88,000 ऋषियों ने निर्णय लिया कि भगवान की कीर्ति को सुनना, भगवान के यश को सुनने को प्राथमिकता दे दी, और जो यज्ञ कर रहे थे विश्व शांति के यज्ञ कर, उसको बंद कर दिया। कंक्लूशन पे आ गए कि सब धुआं 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 हो रहा था, तो कंक्लूशन पे आ गए इससे विश्व में शांति नहीं फैलेगी, क्योंकि इससे उन्हीं को शांति नहीं मिल रही थी, तो विश्व को शांति कैसे मिलेगी। तो विश्व को शांति मिल सकती है किससे, भगवान की कीर्ति और यश अगर सर्वत्र गाया जाए तब, नहीं तो नहीं संभव है। इसलिए भगवान के गुणों गुण रूप लीला आदि को गाना चाहिए, उससे लोग आकर्षित हो जाएंगे और वो भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। तो इस कलयुग में अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। कलयुग का सबसे बड़ा दोष है कि इससे अंतकरण हृदय बहुत अपवित्र रहता है, चेतना दूषित रहती है, विविध प्रकार के काम वासनाएं, लोभ मद मोह मत्सर, ये सब चीजों से हमारा चित्त जो है वो दूषित रहता है और इससे पार पाना बहुत कठिन है। कलयुग का सबसे बड़ा दोष है कि ये हमारी शक्ति है इसको नाश कर देता है। मान लीजिए विषय सामने है लेकिन हम लोग इसको भोगना चाहते थे, हमारे में शक्ति नहीं है भोगने की। तो जैसे समुद्र से पार जाना हो किसी को, यदि उसको कर्मधार मिल जाए, उसी तरह से हम लोगों को आप साक्षात सूत गोस्वामी आपके दर्शन हो गए हैं। तो इस तरह से शौनक आदि ऋषि, सारे जो ऋषि अपने आप को धन्य मान रहे कि उनको हम उनको सूत गोस्वामी जैसे महाभागवत का दर्शन प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को वास्तव में ब्रह्मा जी ने मिला है और किसी की कृपा नहीं, वास्तव में ब्रह्मा जी की कृपा से मिला है कि हे धर्म रक्षक, हे ब्राह्मण भक्त योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ग्रहण की है। अब हम जानना चाहते हैं कि ये एक और प्रश्न पूछते हैं कि धर्म ने, धर्म अभी कहां पर है, कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी चले गए, अब कैसे कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, ये बताइए। अब धर्म कहां पर टिका हुआ है। तो यह सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों से भगवत कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करके फिर उनकी लालसा भगवत कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तो भागवत महात्म्य में, भागवत महात्म्य है उसमें, ये तो हो गया सूत्र गोस्वामी ने आज ये चैप्टर यहीं पर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कि ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है कि ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें भगवान की कथाओं को सुनाइए। उसके बाद भागवत महात्म्य में उद्धव जी महाराज परीक्षित से कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत भूमि में मनुष्य जन्म लेकर, उद्धव जी कह रहे भारत भूमि में मनुष्य जन्म लेकर यदि किसी ने नित्य भागवत के संपर्क में नहीं आया या भागवत श्रवण नहीं किया तो वह व्यक्ति इतना बड़ा पाप कर रहा है, इतना बड़ा पाप कर रहा है, और पाप थोड़ी पाप तो कर ही रहा है, और वो रोज वो आत्महत्या कर रहा है, उसका जी कर कोई उपयोग ही नहीं है, वो मृत व्यक्ति है, डेड है वो। जो व्यक्ति भागवत नहीं पढ़ता है वो मृत के समान है। बहुत बहुत जन्मों के कियो है जो पुण्य होता है ना, बहुत बहुत जन्म हमने मान लीजिए पुण्य किए, उसकी सिद्धि है, क्या सिद्धि है, उसकी सिद्धि यह है कि किसी को श्रीमद् भागवत प्राप्त होता है। मान लीजिए जीवन हम लोगों ने बहुत पुण्य कर्म किया होगा पिछले, तो उसका फल स्वरूप है कि हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त है। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से भक्ति की भावना का उदय होता है और भगवान श्री कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाता है। क्योंकि निरंतर भागवत में जो विविध चरित्रों का वर्णन किया है, उस चरित्रों को बारंबार सुनने से वो जो भागवत में जो भक्त है उनका जो भाव है वो हमारे हृदय में आ जाएगा। उन्होंने कृष्ण को जिस तरह से प्राप्त किया है वो जो लालसा है वो हमारे में आ जाएगी। तो बारंबार वो चरित्र पढ़ने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुतना उद्धार या पुतना उद्धार या जो भी इतने सारे चरित्रों का वर्णन है वो भागवत में है, तो वो केवल उसका उस समय के जो भक्त थे उसका उद्धार हो गया। जैसे पुतना का उदाहरण लीजिए, तो पुतना उद्धार इसके पीछे अंत में शुभदेव गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया है कि गोविंद लपते रहते। तो जो पुतना को सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सौभाग्य हम लोगों को भी मिल सकता है। जैसे पुतना भगवान की लीला में जाकर भगवान की माँ बन गई, गोलोक वृंदावन में पुतना धात्री बनी, माँ यशोदा की सेविका बनी और उसने वो आज भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। तो वो गति हम लोगों को मिल सकती है यदि हम लोग भी भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे, तो हमें भी वो गति मिल सकती है। जो गति गोपियों को मिली है वो गति हमें मिल सकती है बस वो कथाओं को श्रवण करने से। ये भागवत जीवंत है, साक्षात श्री कृष्ण है। यदि हम लोग भागवत के संपर्क में रहेंगे तो जो फल भागवत में जो भक्तों के जो मिला है वो फल हमें मिलेगा। यदि दृढ़ विश्वास है उसको पढ़ेंगे, उसका श्रवण करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे। जैसे रुक्मिणी जी कहाँ भगवान के संपर्क में थी। रुक्मिणी जी अपने पिताजी के घर में रहती थी, पिता के संरक्षण में रहती थी, लेकिन नारद आदि जो साधु लोग हैं वे रुक्मिणी के घर जाते थे और उसको और वहां पर उनके पिता की सभा में रुक्मिणी भी उसमें उपस्थित थी, उसमें भगवान की कीर्ति और यश को गाया जाता था, भागवत को गाया जाता था, वहां पर भगवान की विविध लीलाओं को गाया जाता था। तो उसको सुनकर रुक्मिणी ने अपना चित्त क्या कर दिया, कृष्ण को दे दिया, कहा कि मैं इसी को अपना पति बनाऊंगी। तो हम लोगों के लिए की भी वही स्थिति है, हम लोगों की वही स्थिति है कि हम लोगों के लिए भी श्रवण ही आधार है। हम लोगों को भागवत सुनना है, उसका अध्ययन करना है और उसका कीर्तन करना है और भगवान के नामों का जप करना है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण।